अभिमन्यु इशिका की मदद करना चाहता था, लेकिन इशिका अभिमन्यु के बजाय देशांग की मदद ले रही थी। उसने अभिमन्यु से कहा कि उसे अपनी पहचान सबके सामने साबित करने के लिए देशांग की जरूरत पड़ेगी। अभिमन्यु ने आंखें छोटी करके इशिका की तरफ देखा और मन में सोचा, ये कौन सी पहचान की बात कर रही हो? क्या तुम देशांग की गर्लफ्रेंड के तौर पर सबके सामने आना चाहती हो मैं सिंघानिया? एक बात तो तय है, तुमने प्रोजेक्ट नहीं चुराया है। जरूर देशांग ने इसे वो प्रोजेक्ट भेजा होगा। रोहन ने कहा था कि वो प्रॉब्लम इतनी मुश्किल थी कि उसे डॉक्टर मर्चेंट के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। शायद देशांग ने प्रोजेक्ट इशिका को भेज दिया और इस बारे में डॉक्टर मर्चेंट को नहीं बताया। फिर डॉक्टर मर्चेंट ने वही प्रोजेक्ट नक्श को भेजा होगा और उस वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अभिमन्यु ने अपने मन में काफी कुछ सोच लिया था और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो देशांग को इशिका का बॉयफ्रेंड समझता था। उसके हिसाब से ये बिजनेस वर्ल्ड काफी क्रूएल था। यहाँ लोग अक्सर धोखा देते थे और इसी तरह देशांग ने इशिका के लिए डॉक्टर मर्चेंट को धोखा दिया और उनसे छुपाकर इशिका को प्रोजेक्ट भेज दिया था। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर पूछा, क्या वो तुम्हारे लिए सबके सामने क्लियर करने के लिए आ जाएगा? सच्चाई साबित कर पाएगा वो तुम्हारी? अभिमन्यु के दिमाग में काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही पूछा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, उसे आना ही होगा, इशिका ने काफी विश्वास के साथ कहा। उसकी आंखों में देशांग के लिए इतना भरोसा देखकर अभिमन्यु को बुरा लग रहा था। उसने आगे कहा, क्या इतना ट्रस्ट है तुम्हें उस पर? हाँ, इशिका ने जवाब में इतना ही कहा। इस भरोसे की भी एक वजह थी जिसके बारे में उसने अभिमन्यु को नहीं बताया। वो सही हो या गलत, लेकिन देशांग ने कभी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाया था। इशिका का देशांग के लिए इतना डेडिकेशन देखकर अभिमन्यु को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, मिस सिन्हानिया, कानूनी तौर पर हम दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। माना कि हमारी शादी बाहर नहीं आई है, लेकिन कभी बाहर आई तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। समझ रही हैं ना आप? आपके किसी के साथ रिलेशन की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका चौंक गई। इशिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर अभिमन्यु ऐसा क्यों कह रहा है। ये तो कभी डिसाइड नहीं हुआ था कि इशिका और अभिमन्यु की शादी कभी रिवील भी होगी। अचानक अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, जब तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तब तक मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ रिलेशन में आगे बढ़ें। अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अभिमन्यु ने इतना ही कहा और फिर वसुधा के कमरे में चला गया, जबकि इशिका वहां पर अभी तक हैरान परेशान खड़ी थी। एक तरफ तो अभिमन्यु को उनकी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वहीं अब वो उसे लॉयल रहने के लिए कह रहा था। ये क्या बकवास कर रहा था? जरूर आज फिर से इसकी मीटिंग सही नहीं गई, तभी इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। ये होता कौन है मुझे ये कहने वाला कि मैं किसी के साथ रिलेशन में रहूं या नहीं? इशिका ने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा और फिर वो भी अंदर चली गई। इशिका वसुधा के साथ थी जबकि अभिमन्यु उसके आते ही कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त वो हॉस्पिटल की बालकनी में खड़ा था, उसके पास में पृथ्वी भी था। अभिमन्यु ने पृथ्वी से सख्त आवाज में कहा, मुझे देशांग राठौर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है सर, पृथ्वी ने इतना ही कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी अभिमन्यु वहां पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। लगभग 40 मिनट बाद पृथ्वी वापस उसके पास आया। उसने अपना काम काफी जल्दी निपटा लिया था। पृथ्वी ने आते ही अभिमन्यु से कहा, सर, मैंने देशांग राठौर के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी है, आप चेक कर लीजिए। अभिमन्यु ने फाइल को खोला और देशांग के बारे में पढ़ने लगा। वो लगभग 28 साल के करीब था, घर पर काफी सिंपल और अकेले रहना पसंद करता था, जबकि बाहर की उसकी लाइफ पूरी तरह अलग थी। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था और पिछले 3 सालों से डॉक्टर मर्चेंट के लिए काम कर रहा था। वही डॉक्टर मर्चेंट की कंपनी को मैनेज कर रहा था और जल्द ही वो अपनी कंपनी को पब्लिक करने वाले थे। अभिमन्यु को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, बस इतना ही, आगे की इन्फॉर्मेशन कहाँ है? लेकिन इसमें तो सारी रिपोर्ट है, यहाँ तक कि उसके डिग्रीज और मार्क्स तक की फाइल मैंने अटैच की है, फिर क्या बाकी ले गया? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। उसकी पर्सनल लाइफ, उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, अभिमन्यु ने भौंय उठाकर कहा। उसकी बात सुनकर पृथ्वी चौंक गया। आज से पहले अभिमन्यु ने किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, फिर अचानक वो देशांग राठौर के बारे में सब क्यों जानना चाहता था? पृथ्वी ने फिर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बोला, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं आता हूँ। इस बार पृथ्वी खुद नहीं आया था, बल्कि उसने आधे घंटे बाद देशांग की पर्सनल लाइफ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अभिमन्यु को भेज दी थी। जैसे ही अभिमन्यु ने उसे देखा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। तो मिस सिंघानिया एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो हर 3 महीने में अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता है और एक टाइम में एक से ज्यादा लड़कियों को डेट करता है। मानना पड़ेगा आपको मिस सिंघानिया, काफी चुनकर लड़का ढूंढा है आपने, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु को दिल ही दिल में खुशी हो रही थी कि दिशांक एक आइडल बॉयफ्रेंड नहीं है। वो धीरे से बोला, चलो अब आपके प्यारे बॉयफ्रेंड के बारे में आपको बताया जाए ताकि आपकी आंखों पर ये जो प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है वो उतर कर नीचे गिरे। अभिमन्यु उस इन्फॉर्मेशन को इशिका को दिखाने के लिए तुरंत वसुधा के कमरे में आया। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया उसने देखा वसुधा एक किताब के अंदर घुसी हुई थी, तो वही इशिका काउच पर बैठकर बिल्लू के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु ने इशिका को खुश देखा तो वो उसकी मुस्कुराहट में खो गया। वो मन ही मन बोला, मैंने बहुत कम मौकों पर इसे खुश देखा है, ये सच्चाई बहुत बड़ी है और अगर मिस सिंघानिया को पता चली तो वो उदास हो जाएगी। नहीं, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनसे सच छुपाना भी तो सही नहीं है। अभिमन्यु कश्मकश की स्थिति में था कि वो इशिका को बताए या नहीं। तभी वसुधा की नज़र उसके ऊपर गई जो इशिका को एकटक देख रहा था। क्या हुआ, वसुधा ने उसे घूरते हुए पूछा। अभिमन्यु ने तुरंत अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और खुद को शांत करके सामान्य लहजे में कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ। अभिमन्यु के कहने के बावजूद भी वसुधा पर तसल्ली नहीं मिली। वो बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, तुम इतनी देर से अपनी पत्नी को देखे जा रहे हो, जरूर तुम्हें उसे अकेले में बात करनी होगी। वसुधा के कहते ही इशिका ने मुस्कुराते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु बिल्कुल चुप हो गया था। इशिका ने इशारे से अभिमन्यु की तरफ भौंहें उठाकर पूछा कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। बात को टालने के लिए अभिमन्यु वसुधा के पास गया और बोला, दादी आप काफ़ी ग्लो कर रही हैं और एनर्जेटिक भी लग रही हैं, आपको नहीं लगता कि अब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेना चाहिए? वसुधा ने तुरंत अपना मुंह बनाया और सीने पर हाथ रखकर बोली, अरे नहीं बच्चे, मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ, अभी भी मेरे सीने में दर्द होता है, मुझे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना है। वसुधा के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसने डिस्चार्ज ले लिया तो अभिमन्यु और इशिका एक साथ नहीं रह पाएंगे। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पर पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाए। वैसे भी अभिमन्यु ने वसुधा के एडमिट होने के अगले दिन ही उसे रूम को इस हिसाब से डिजाइन करवा दिया था जिसमें इशिका और अभिमन्यु आराम से वहां रह सके। उनके लिए सेपरेट बेड और बाकी सारी सुविधाएं मौजूद थीं। पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए जो अलग से कमरा बना था उसमें भी उसने कपनों से लेकर सब कुछ मंगवा लिया था।
वसुधा ने अपने मन में कहा, इन्होंने शादी की थी तब दोनों ही उम्र में इतने समझदार नहीं थे, एक दूसरे को देखेंगे तो फिर से करीब आ जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं राजवंश विला में जाऊँ तो अपनी बहू को साथ लेकर जाऊँ। वसुधा की जिद के आगे अभिमन्यु और ऋषिका कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी दवाइयाँ ली और सोने चले गए, तो वहीं अभिमन्यु और ऋषिका अपने अपने काम में लगे थे। देर रात तक काम करने के बाद दोनों वहीं पर सो गए थे। वीकेंड होने की वजह से अगले दिन ऋषिका वसुधा के वार्ड में ही थी। वो न्यूरोसाइंस की वो किताब पढ़ रही थी, तभी उसके पास लक्ष्य का कॉल आया। ऋषिका अभी इसी वक्त ओशन यूनिवर्सिटी पहुँच जाओ, वहाँ प्रोफेसर मिलर के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लक्ष्य ने घबराई आवाज़ में कहा। प्रोफेसर मिलर का नाम सुनकर ऋषिका घबरा गई। उसने कहा, ठीक है मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँचती हूँ। ऋषिका ने वसुधा की जिम्मेदारी नर्स पर छोड़ी और खुद जल्दी से नीचे आई। वो टैक्सी बुला रही थी तभी पृथ्वी उसके पास आया और बोला, मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश ने कहा है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मैं आपको वहाँ छोड़कर आऊँगा। ऋषिका ने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि उसे जल्द से जल्द ओशन यूनिवर्सिटी पहुँचना था। वो गाड़ी में बैठते हुए बोली, मुझे ओशन यूनिवर्सिटी छोड़ दो और थैंक यू सो मच। जैसे ही ऋषिका यूनिवर्सिटी पहुंची वो जल्दी से हेड ऑफिस में पहुंची। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भीड़ इकट्ठा करके खड़े हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स ऑफिस के अंदर भी थे। ऋषिका जल्दी से अंदर गई तो उसने देखा प्रोफेसर मिलर लाल चेहरे के साथ वहाँ खड़े हुए थे। कॉलेज के डीन उन्हें गुस्से से देख रहे थे। वो उन पर भड़कते हुए बोले, आप इस कॉलेज के स्टूडेंट के फ्यूचर का डिसीजन लेने वाले होते कौन हैं? किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशन उसके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपने अपने रेकमेंडेशन लेटर को इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उस लड़की का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। आपने कहा था कि उसके कैरेक्टर के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ था तो आप आकर मुझसे बात करते, फिर मैं उसे अपने हिसाब से सजा देता। आप अपने किए कि जब तक मुझे कोई वाजिब वजह नहीं बता देते मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। डीन की बात सुनकर ऋषिका चौंक गई। यहाँ उसी के बारे में बात हुई थी, लेकिन प्रोफेसर मिलर ने कब उसे यूनिवर्सिटी से निकाला था? प्रोफेसर मिलर वहाँ उसी की वजह से खड़े थे। फिर डीन में वापस गुस्से में प्रोफेसर मिलर की तरफ देखकर कहा, आपको पता भी है आपने जिस स्टूडेंट को निकाला था उसने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुरा लिया है। इस तरह के स्टूडेंट हमारे कॉलेज का नाम खराब करते हैं। कल को यही कहा जाएगा कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ी हुई है, हमारा नाम खराब होगा। हम क्या स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं? कुछ भी करके इस मुसीबत से निपटना होगा। उनकी बात सुनकर प्रोफेसर मिलर ने गुस्से में तेज आवाज में कहा,
इशिका सिंघानिया ऐसा नहीं कर सकती है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे मिली इन्फॉर्मेशन गलत है? यहाँ हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर मर्चेंट हमारे यहाँ आकर स्टूडेंट्स की क्लास ले, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए कितनी कोशिश कर रही हैं उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि उनके प्रोजेक्ट को हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने चुरा लिया है। उसे सज़ा देनी होगी, तभी डॉक्टर मर्चेंट हम पर यकीन कर पाएंगे, डीन ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, तो आप ये सब डॉक्टर मर्चेंट को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? वो स्टूडेंट मेरे अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरे सिग्नेचर के बिना आप कोई पनिशमेंट तय नहीं कर पाओगे, प्रोफेसर मिलर ने भौंई चढ़ाकर कहा। वो इशिका को सपोर्ट कर रहे थे। आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकते हैं प्रोफेसर? उस लड़की के लिए आप डॉक्टर मर्चेंट से पंगा लेने के लिए तैयार हो गए, और उसके साथ उसका कंपैरिजन हो भी कैसे सकता है? आपने क्या सोचकर कहा कि इशिका सिंघानिया ने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट नहीं चुराया है? वैसे भी तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती, आखिर तुम हो ही कौन? एक मामूली से प्रोफेसर, डीन ने पूरे घमंड में आकर कहा। इशिका प्रोफेसर मिलर की बुराई और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से अंदर गई और सख्त आवाज में बोली, आप प्रोफेसर मिलर को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनके बिना डॉक्टर मर्चेंट का कोई वजूद नहीं है। अगर आप प्रोफेसर मिलर को यहाँ से निकालते हैं तो डॉक्टर मर्चेंट कभी यहाँ काम करने के लिए नहीं आएंगे। इशिका ये सब डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर कही थी क्योंकि वो प्रोफेसर मिलर की बहुत इज्जत करती थी। अगर प्रोफेसर मिलर को ही निकाल दिया जाता है तो वो डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर वहाँ कभी लेक्चर देने के लिए नहीं आती। इशिका झूठ नहीं बोल रही थी। अगर प्रोफेसर मिलर नहीं होते तो वो कभी डॉक्टर मर्चेंट नहीं बन पाती। शुरुआत में उसे ये सब्जेक्ट काफी बोरिंग लगता था, पर एक बार हाई स्कूल के टाइम उसने उनकी काउंसलिंग क्लासेज अटेंड की थी, तब प्रोफेसर मिलर से इंस्पायर होकर उसने अपना पूरा टाइम न्यू एनर्जी रिसर्च को दिया और खुद की पहचान बनाई। वही उसकी इंस्पिरेशन और सक्सेस का कारण थे। इशिका के शब्द इतने सख्त थे कि ऑफिस में मौजूद हर एक शख्स उसकी तरफ देख रहा था। अनजाने में वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने जा रही थी और उसने काफी हद तक बता भी दिया था। दो चार लोगों के बीच तो बिल्कुल नहीं। अक्सर इशिका का भीड़ में तमाशा बना है, तो वही भीड़ अब उसकी कामयाबी को जानने के बाद उसकी इज्जत करेगी। बस कुछ एपिसोड रुक जाइए, इशिका का सच सामने आ जाएगा। एक और बात, अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं तो प्लीज मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।